अध्याय 23 पवित्र आत्मा। प्रत्येक मसीही का अधिकार है कि वो प्रभु यीशु मसीह की न केवल राह ताकते रहें किंतु उसके आगमन को शीघ्र लावे। यदि सब जो उसके नाम का इकरार करते हैं उसकी महिमा के लिए फल लाते तो कितनी शीघ्रता से सुसमाचार का बीज सारे संसार में बो दिया जाता। अंतिम फसल शीघ्र ही पक जाती और मसीह कीमती अनाज को जमा करने आ जाता। मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा के लिए विनती कीजिए। अपनी की हुई प्रत्येक प्रतिज्ञा के पीछे परमेश्वर खड़ा है। हाथों में अपनी बाइबल लेकर कहिए, जैसे तूने कहा मैंने किया। मैं तेरी इस प्रतिज्ञा को प्रस्तुत करता हूं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 77। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:24। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यूहन्ना 14:13। मसीह अपने दूतों को अपने राज्य के प्रत्येक भाग में अपनी इच्छा को अपने दासों तक पहुंचाने के निमित्त भेजता है। वो अपनी मंडलियों के बीच में फिरता है। वो अपने अनुयायियों को शुद्ध, उच्च तथा श्रेष्ठ बनाने की इच्छा करता है। उस पर विश्वास करने वालों का प्रभाव संसार में जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। मसीह तारों को अपने दाहिने हाथ में थामे हुए हैं और उसका अभिप्राय ये है कि उनके द्वारा अपने प्रकाश को संसार पर चमकावे। यूं वो चाहता है कि अपने लोगों को स्वर्गीय कलीसिया में उच्च सेवा के लिए तैयार करे। उसने हमें एक भारी काम करने को दिया है। भाइयों, उसको ईमानदारी के साथ करें। आइए हम अपने जीवन में प्रकट करें कि ईश्वरीय अनुग्रह मानव के लिए क्या क्या कर सकता है। पवित्र आत्मा के उडेले जाने से पूर्व ऐक्य होना जरूरी है। ध्यान दीजिए कि शिष्यों में पूर्ण एकता आ जाने के बाद, जब वे उच्च पद प्राप्त करने के लिए अब कोई कोशिश नहीं कर रहे थे, पवित्र आत्मा उंडेला गया। वे एक दिल हो गए थे। सकल भेदभाव दूर हो गए थे। पवित्र आत्मा के दिए जाने के बाद उनके विषय में जो साक्षी दी गई थी वो भी तदनुकूल है। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। प्रकाशित वाक्य 4:32। वो जो मर गया था ताकि पापी जीवन प्राप्त करे, और उसकी आत्मा ने विश्वासियों की समस्त मंडली को पुंजीवित कर दिया। शिष्यों ने अपनी आशीष के लिए विनती नहीं की। उनके हृदय आत्माओं के भार से लदे हुए थे। सुसमाचार पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचाए जाने को था। अतः उन्होंने उस सामर्थ्य के दान के लिए प्रार्थना की जिसका वादा मसीह ने किया था। तब पवित्र आत्मा का दान दिया गया और एक ही दिन में सहसों व्यक्ति प्रभु पर विश्वास लाए। इसी प्रकार अब भी होता है। मसीहियों को सकल भेदभाव दूर करके अपने आप को खोए हुओं को बचाने की खातिर परमेश्वर को दे देना चाहिए। उनको प्रतिज्ञा की हुई आशीष के लिए विश्वास के साथ विनती करनी चाहिए और वो अवश्य मिलेगी। प्रेरितों के काल में आत्मा का उड़ेला जाना प्रथम वर्षा कहलाती थी और नतीजा वैभवपूर्ण निकला, परंतु अंतिम वर्षा बहुतायत के साथ होगी। जो लोग अंतिम दिनों में रहते हैं उनसे क्या प्रतिज्ञा की गई है? हे आशा धरे हुए बंदियों, गण की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वो उनको वर्षा देगा और हरेक के खेत में हरियाली उपजाएगा। ज़करिया 6:12-10:1। प्रत्येक की उपयोगिता उसके पवित्र आत्मा को समर्पण पर निर्भर। जो काम हमारे सामने है उसे परमेश्वर नहीं कहता कि हम अपने ही बल पर करें। उन सारी संकटकालीन घटनाओं के लिए जिनके निवारणार्थ हमारे मानव साधन असमर्थ है, उसने ईश्वरीय सहायता की व्यवस्था की है। वो प्रत्येक विपत्ति के समय सहायता करने, हमारी आशा और आश्वासन को बलिष्ठ करने, हमारे मनों को प्रकाशमान और हृदयों को शुद्ध करने के निमित्त पवित्र आत्मा प्रदान करता है। मसीह ने प्रबंध किया है कि उसकी कलीसिया एक परिवर्तित संप्रदाय बनकर स्वर्गीय प्रकाश से प्रदीप्त हो और इम्मानुएल की महिमा धारण करे। उसका अभिप्राय है कि प्रत्येक मसीही ज्योति और शांति के आत्मिक वायुमंडल से घिरा रहे। जो मनुष्य स्वार्थ को त्याग कर अपने हृदय में पवित्र आत्मा को काम करने के लिए जगह बनाता है और परमेश्वर के लिए पूर्ण समर्पित जीवन व्यतीत करता है, उसकी उपयोगिता की कोई सीमा नहीं। पिंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के उड़ेले जाने का क्या नतीजा हुआ? जी उठे। त्राणकर्ता का सुसमाचार आबाद दुनिया की दूरस्थ सीमाओं तक पहुंचाया गया। शिष्यों के हृदय पूर्ण अगाध तथा गंभीर प्रभाव डालने वाले परोपकार से ऐसे भरपूर थे कि वे पृथ्वी के छोरों तक जाने को प्रोत्साहित हो गए और साक्षी देते गए कि मैं और किसी बात का घमंड न करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। गलातियों 6:14। जब वे सत्य का प्रचार करते गए तो मानवों के हृदय संदेश को शक्ति के समर्पण होते गए। कलीसिया में नव शिष्य चारों ओर से झुंड आते गए। भटके हुए फिर से विश्वास लाए। पापी लोग मसीहियों में मिलकर अनमोल मोती की तलाश करने लगे। सुसमाचार के कट्टर शत्रु उसके लिए प्राण निछावर करने वाले बन गए। ये भविष्यवाणी पूरी हो गई कि निर्बल दाऊद की भांति और दाऊद का घराना परमेश्वर के दूत की भांति हो जाएगा। प्रत्येक मसीही ने अपने भाई में प्रेम और दयाशीलता की छवि देखी। मसीह के सरीखे बनने के विचार ने दूसरे सब विचारों को परास्त कर दिया।
विश्वासियों में एक ही अभिलाषा थी कि मसीह के चरित्र की छवि को प्रकट करें और उसके राज्य को फैलाने के लिए परिश्रम करें। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा जो प्रथम शिष्यों को दी गई, वो आज हमारे लिए भी है। परमेश्वर आज भी पुरुष व स्त्रियों को आत्मा का दान देगा, जिस प्रकार उसने उनको दिया जिन्होंने पिंतकोस्त के दिन त्राण का वचन सुना था। इसी घड़ी उसकी आत्मा और उसकी अनुग्रह उनके लिए उपस्थित है जिनको जरूरत है और जो उसके वचन को स्वीकार करेंगे।
पवित्र आत्मा अंत तक वास करेगा। मसीह ने घोषणा की थी कि पवित्र आत्मा का प्रभाव उसके अनुयायियों के संग अंत तक रहेगा, परंतु उस प्रतिज्ञा की ऐसी सराहना नहीं की जाती जैसी करनी चाहिए, इसलिए उसका पूरा होना भी दृष्टि में नहीं आता। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा का विषय ऐसा है जिस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और नतीजा भी वही है जिसकी आशा की जा सकती है, अर्थात आत्मिक अभाव अंधियारा, आत्मिक अवनति तथा मृत्यु। छोटी छोटी बातें ध्यान को बांटे रहती हैं और ईश्वरीय शक्ति जो मंडली की बुद्धि और समृद्धि के लिए जरूरी है और जो सकल अन्य आशीषों का ताता अपने साथ में लाती है, की भारी कमी है। यद्यपि उसके बहुतायत के साथ दिए जाने का वायदा है।
आत्मा के अभाव से ही सुसमाचार की सेवा निर्बल व शक्तिहीन हो जाती है। विद्या, योग्यता, वाक्पटुता, प्रत्येक प्राकृतिक तथा उपार्जित देन भले ही प्राप्त हों, परंतु परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति के बिना एक भी हृदय स्पर्शित न होगा, न ही कोई ऐसा पापी मसीह के लिए जीता जाएगा। प्रत्युत यदि वे मसीह के साथ संबंध रखते, यदि आत्मा के दान उनके अंदर होते, तो सबसे कंगाल और अनपढ़ शिष्य भी ऐसा सामर्थ्यवान सिद्ध होगा जिससे हृदयों पर उसका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देगा। परमेश्वर उनको उच्चतम प्रभाव के प्रदर्शित होने का माध्यम बनाएगा। परमेश्वर की धुन ने शिष्यों को सत्य के लिए बड़े सामर्थ्य के साथ साक्षी देने को उत्तेजित किया। क्या यही धुन हमारे हृदयों को इस प्रण से प्रज्वलित न करे कि हम भी मसीह के बचाने वाले प्यार और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने का वृतांत लोगों को सुनावे? क्या परमेश्वर का आत्मा आज भी उत्साहपूर्ण तथा तत्परतापूर्ण प्रार्थना के उत्तर में आकर लोगों को सेवा कार्य के लिए शक्ति से भरपूर न करेगा? तब फिर कलीसिया क्यों इतनी कमजोर और निर्जीव सी है?
जब पवित्र आत्मा हमारे सदस्यों के मनों को नियंत्रण में रखेगा, तो हमारी मंडलियों में बातचीत में, सेवा कार्य में, भक्तिभाव में उससे भी उच्चतर स्तर पाया जाएगा जो अब देखने में आ रहा है। मंडली के सदस्य जीवन के जल से ताजा दम होंगे और कर्मचारी मसीह की प्रधानता में अपने स्वामी को आत्मा, वचन, कर्म द्वारा प्रकट करेंगे और एक दूसरे को प्रोत्साहन देंगे कि इस उत्कृष्ट अंतिम कार्य में जिसमें हम लगे हुए हैं आगे बढ़ें। मेल और प्रेम में यथोचित उन्नति होगी।
जो संसार पर एक साक्षी ठहरेगी कि परमेश्वर ने अपना पुत्र पापियों के त्राण के लिए जगत में भेजा। ईश्वरीय सत्य समुन्नत होगा और जब वो जलते हुए दीपक की तरह चमकेगा तो हम उसको और भी स्पष्टता से समझ जाएंगे। मुझे दिखलाया गया कि यदि परमेश्वर के लोग कुछ प्रयत्न न करें परंतु पवित्र आत्मा के लिए बाट देखते रहें कि वो आकर उनकी बुराइयों को दूर करेगा और गलतियों को ठीक करेगा, यदि वे उसी पर निर्भर करें कि वो उन्हें शरीर और आत्मा की मलिनता से शुद्ध करेगा और उनको तीसरे दूत के ऊंचे शब्द में संलग्न होने के योग्य बनाएगा, तो वे सचमुच हल्के पाए जाएंगे। परमेश्वर की शक्ति केवल उन्हीं पर आएगी जिन्होंने अपने को उसकी आज्ञा अनुसार कार्य करने द्वारा अर्थात अपने शरीर तथा आत्मा को मलिनता से शुद्ध करने और परमेश्वर के भय में पवित्रता की वृद्धि करने द्वारा तैयार किया है।